पंडित जी जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र।
रजनीभाई तमे छो? हाँ पंडित जी, बस मंगलाचरण कर कर आप शुरू करो।
अच्छी बात, ठीक है, मंगलाचरण ले रहे हैं समय
हाँ, और
सारणी का।
पंडित जी हाँ पंडित जी 5 बजे तक हम रखेंगे, मगर ऐसा
हाँ
5 मिनट हम आखिर में 5 मिनट क्वेश्चन के रखेंगे, और ऊपर दूसरे 5-1 मिनट हो गए तो आपको शाम के
हाँ नहीं कोई
उतावर
बात,
के है के नहीं के।
हाँ
हाँ
नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं, 5 मिनट
नहीं
के लिए कोई
परेशानी
बात
है ना।
नहीं,
हाँ
ठीक है।
आपको, हाँ मुझे ऐसा है कि शाम को फिर आपने खाना खाकर फिर मंदिर आना
हाँ
है
नहीं ठीक
तो
है,
थोड़ी
जैसे
उतावर
मुझे
मिलेगी।
बता दिया है कि 50 मिनट तो अपने को ये प्रवचन करना है, और 10 मिनट
हाँ
का टाइम वही चर्चा के लिए या प्रश्नोत्तर
बराबर,
के लिए रखना,
हाँ
ठीक
हाँ
है? ठीक
बराबर है, हाँ। तो
है,
पंडित जी, हाँ, अभी हम शुरू करते हैं।
ठीक है, मंगलाचरण चालू करते हैं।
हाँ
वंदे तु सब सिद्धे
चालू
धूम
नहीं।
चल मनोभवम गदिम पते बोच्छामि समय पाहुरु मृणमो सुद केवली भणिदम नमा समय साराये स्वानुभूत्या चकाशते चित सुभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। पुण्य पाप अधिकार समय सारिणी में चल रहा है, और इसमें कल अपने पुण्य पाप अधिकार के अंतर्गत पहली एक गाथा ली थी, जिसमें कुंद कुंदाचार्य ने बात कही थी कि कर्म जो अशुभ है वो अशुभ कर्म कुशील है और शुभ कर्म सुशील है। ऐसा अगर शिष्य का प्रश्न है कि इनको हम सुशील जाने दो, उनमें पुण्य को सुशील और पाप को कुशील जाने, तो आचार्य ने समाधान किया कि वह सुशील कैसे हो सकता है पुण्य जो संसार में प्रवेश कराता है। संसार में प्रवेश कराने वाला कोई भी भाव सुशील भाव नहीं है, संसार से निकालने वाला भाव और मोक्ष प्राप्त कराने वाला भाव ही सुशील भाव है, बाकी सब कुशील में आते हैं। इस तरह उन्होंने कुंद कुंदाचार्य ने कहा था, पर शिष्य ने इनमें भेद 4 तरीके से बताया था, यानी उसने 4 प्रकार का भेद गिनाया था। वो हेतु का यानी कारण भेद गिनाया था, स्वभाव भेद गिनाया था, अनुभव भेद गिनाया था और आश्रय भेद गिनाया था, और चारों में भेद बता करके ये कहा था कि पाप और पुण्य में अंतर है, दोनों दो रूप हैं, एक रूप नहीं है। उसका समाधान हमारे आचार्य ने ये किया था कि ये जो भेद पक्ष है ये अज्ञान में दिखाई देता है, ज्ञान में तो एकत्व ही नजर आता है, और वो चारों हेतुओं को ध्यान में देकर भी एकत्व ही नजर आता है। जैसे हेतु के विषय में उन्होंने कहा था कि जीव के जो शुभ भाव और अशुभ भाव हैं दोनों के दोनों अज्ञानमय हैं, यानी अज्ञान उनका हेतु है। पुण्य भाव का भी हेतु अज्ञान है और पाप भाव का भी हेतु अज्ञान है। देखो इसमें विचार ये करना है बहुत बारीकी से कि यद्यपि पुण्य भाव पाप भाव दोनों को अज्ञान का कारण बताया, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ज्ञानी के भी पुण्य भाव होता है, अज्ञानी के भी पुण्य भाव होता है। ज्ञानी के पुण्य भाव अज्ञान के कारण से होते हैं और अशुभ भाव भी उसका अज्ञानमय होता है, लेकिन ज्ञानी के जो पुण्य भाव होता है वो चरतमो की कमजोरी के कारण तो होता है, लेकिन ज्ञानी के अभिप्राय से वो दोनों में एकत्व न मान, दोनों में एकत्व मानते हैं, दोनों में भिन्नत्व नहीं मानते, इसलिए ज्ञानी के अभिप्राय में वास्तव में हेतु भेद नहीं होता और ना ही अज्ञान भाव होता है। ज्ञानी के सदा ज्ञान भाव वर्तता है और अज्ञानी के सदा अज्ञान भाव वर्तता है। ये जो शुभ अशुभ दोनों परिणाम हैं ये उत्पन्न होने की अपेक्षा अज्ञान हेतु नहीं कहा, वास्तव में भी अज्ञान इस अपेक्षा कहे गए कि इसको जो दृष्टि में उपादेय मानता है, भला मानता है, अशुभ को हेय मानता है, बुरा मानता है, ये जो दोनों में भेद किया है ये दोनों कर्म हैं और उनमें भेद करना ये अज्ञान है। इसलिए शुभ भाव, और एक दूसरा हेतु और है कि शुभ भाव स्वयं न अपने को जानता है न पर को जानता है, और अशुभ भाव भी न अपने को जानता है न पर को जानता है, इसलिए वे दोनों ही भाव अज्ञान की संतान हुए, क्योंकि उनमें स्वपर को जानन स्वभाव का अभाव है। इसलिए दोनों परिणाम अज्ञानमय हैं और अज्ञान रूप हैं। इस कर्म का हेतु एक अज्ञान ही है, अतः कर्म में एक कर्म शुभ रूप है और दूसरा अशुभ रूप है, इनके हेतु भेद खोजना ये अज्ञान का कार्य है, ज्ञान का कार्य नहीं है। ज्ञान में तो दोनों एक ही नजर आते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों अज्ञानमय भाव हैं और अज्ञान के कारण दोनों के दोनों भाव हुए हैं। इस तरह से शुभ अशुभ भाव में जो अज्ञानी ने हेतु भेद दिया था, उस हेतु भेद का निषेध किया, और फिर आगे लिखा कि शुभ अशुभ पुद्गल परिणाम दोनों पुद्गलमय ही हैं। तो ये उसने स्वभाव भेद बताया था, दोनों में स्वभाव भेद बताया था, लेकिन आचार्य कहते हैं दोनों में कोई स्वभाव भेद नहीं है, क्योंकि दोनों परिणाम चाहे अशुभ परिणाम हो वो भी पुद्गल परिणाममय है, और शुभ परिणाम हो वो भी पुद्गल परिणाममय है। आश्चर्य की बात है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य जो कि तीर्थंकर प्रकृति मानने वाला पुण्य भी है, वह भी पुद्गलमय परिणाम है, वो आत्ममय परिणाम नहीं है। इसीलिए आचार्य तो ये कहते हैं शुभ चाहे उत्कृष्ट जाति का हो अथवा कुछ निम्न जाति का हो, लेकिन शुभ भाव भी वास्तव में पुद्गलमय होने से वह भाव उपादेय नहीं है, और वह भाव जीव भाव नहीं है, वह भाव वास्तव में पुद्गल भाव है, अजीव भाव है। इसलिए कर्म का स्वभाव एक पुद्गल परिणाम स्वरूप ही है। यानी हेतु की अपेक्षा भी बता दिया कि दोनों अज्ञान के हेतु से पैदा होते हैं, और अब दोनों को पुद्गलमय बता दिया क्योंकि दोनों जानन स्वभाव से रहित होते हैं, इसलिए दोनों को पुद्गलमय बताकर स्वभाव भेद का भी खंडन कर दिया। तीसरी बात कही थी अनुभव भेद। अनुभव भेद में शिष्य ने ये कहा था कि हमें इन दोनों का अलग अलग अनुभव होता है, एक का अनुभव कटुक होता है, दूसरे का अनुभव मधुर होता है। ये जगत के सब जीवों को ऐसा अनुभव होता है जब तक मिथ्यात्व नहीं जाता तब तक, कि ये जो अशुभ का उदय आता है ये दुखदायी है, और जो अनुकूलता मिलती है पुण्य के उदय में ये उसको सुखदायी भाषित होती है। और यही नहीं, वो उपाय भी जीवन भर ऐसे करता है कि जिससे उसके अनुकूलता बनी रहे, क्योंकि अनुकूलता में उसने सुख माना है और प्रतिकूलता में उसने दुख माना है। पर ज्ञानी जीव के तो संभाव वर्तता है, अनुकूलता भी बाह्य संयोग है और प्रतिकूलता भी बाह्य संयोग है। बाह्य संयोग में सुख बुद्धि ज्ञानी जीव को नहीं होती, इसलिए वो पुण्योदय हो या पापोदय हो दोनों में समचित्त रहता है, संभाव रखता है, किसी को भला और किसी को बुरा नहीं मानता है। इस हेतु से उसका जो अनुभव है, चाहे वो अनुभव कटुक हो और चाहे वो मधुर हो, चाहे वो अच्छा लगे चाहे वो बुरा लगे, दोनों में वास्तव में दोनों प्रकार के अनुभव में कोई भी भेद नहीं, क्योंकि वो अनुभव सब पुद्गल का ही है। कटुक लगना माने बुरा लगना, मधुर लगना माने अच्छा लगना, पर मधुरता भी पुद्गल की है और कटुकपना भी पुद्गल का है। इसलिए दोनों में जो अनुभव भेद नजर आता है वो एक भ्रांति के कारण अनुभव भेद नजर आता है, परमार्थ से देखा जाए तो दोनों के अनुभव में कोई भेद नहीं है। तीन बातें हुई, हेतु से भी अभेद है, स्वभाव से भी पुण्य पाप अभेद हैं, और अनुभव से भी वे अभेद हैं। अब चौथा बिंदु जो था शिष्य का कि उनका आश्रय भी भिन्न भिन्न है, तो उस भिन्न भिन्न आश्रय के विषय में आचार्य जवाब देते हैं कि वो वास्तव में वो भिन्न भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? बंध मार्ग केवल पुद्गल के परिणाम रूप ही है, यानी पुद्गल के आश्रय से ही बंध मार्ग चलता है, और आत्मा के आश्रय से केवल मोक्ष मार्ग चलता है। पुण्य पाप भावों के आश्रय से बंध मार्ग चलता है, इसलिए भी सब पुद्गल रूप है, और अनुभव के मार्ग से मोक्ष मार्ग चलता है, इसलिए वो अनुभव जो है वो चेतन रूप है, ज्ञान रूप है, जीवमय है, जीव स्वभाव है। इस तरह से दोनों पुण्य और पाप के जो परिणाम हैं उनमें जो आश्रय देखा जाता है वो आश्रय पर कई देखा जाता है, पुद्गल का देखा जाता है, और इस कारण से दोनों के आश्रय में भी भेद नजर नहीं आता ज्ञानी को। इस तरह से चारों हेतुओं का निराकरण करते हुए उन्होंने इस बात का खंडन किया। इसको बनारसी दास जी ने भी इस तरह से जवाब लिखा है, बहुत सुंदर तरीके से लिखा है इसी ग्रंथ की प्रस्तावना में, एक 26 नंबर के पेज में, 26 नंबर का पेज माने 26 पेज पर प्रस्तावना में वो पद लिखा गया है। देखिए पद ऐसा लिखा है, 26 पेज पर है प्रस्तावना में, पाप बंद पुण्य बंद दुहू में मुकत नाही, कटुक मधुर स्वाद पुद्गल को पेखिए, संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्मचाल, कुगति सुगति जग जाल में विशेखिए। देखिए दोनों एक ही कह दिया, पाप पुण्य बंद पुण्य बंद दुहू में मुकत नाही, दोनों से मुक्ति नहीं होती है, इसलिए दोनों बंद के तो हेतु हैं, मुक्ति का एक भी हेतु नहीं है, इस कारण से दोनों में एकत्व है। कटुक मधुर स्वाद पुद्गल का पेखिए, और जो उसमें कटुक स्वाद आता है या मधुर स्वाद आता है, पाप का कटुक स्वाद होता है, पुण्य का मधुर स्वाद होता है, सो वह स्वाद भी पुद्गल का जानना चाहिए, वो पुद्गल है, क्योंकि मधुर भाव मधुर स्वाद भी पुद्गल का है और कटुक स्वाद भी पुद्गल का है। संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, और संकलेश परिणाम वो पाप की चाल है और विशुद्ध परिणाम वो पुण्य की चाल है, लेकिन संकलेश और विशुद्ध दोनों परिणाम कर्म की चाल हैं, धर्म की चाल नहीं है, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। और कुगति सुगति जग जाल में विशेखिए, उसका एक फल आता है, यानी पाप का फल कुगति आता है, पुण्य का फल सुगति आता है, लेकिन कुगति भी संसार है और सुगति भी संसार है, दो गतियां सुगति मानी जाती हैं, मनुष्य गति और देव गति को सुगति कहते हैं, क्यों वहां पुण्य की अनुकूलता होती है, इस अपेक्षा लोक व्यवहार में उसको सुगति कहते हैं, और नरक और त्रियंच इनमें पुण्य की अनुकूलता नहीं होती, पाप की विशेषता होती है, इस कारण इन दोनों को भला नहीं मानते हैं, बुरा मानते हैं लोक व्यवहार में, लेकिन आचार्य कह रहे हैं वो कुगति हो या सुगति हो, चारों गतियां जगत जंजाल है, जगत से बाहर नहीं है, इस कारण से उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी अगर तुम उसमें अंतर मानते हो तो आगे लिखते हैं बनारसी दास जी, कारणादि भेद तो है सूझत मिथ्यात्मा ही, तो उनमें कारण का भेद मानता है, उसमें हेतु भेद मानता है, आश्रय भेद मानता है, स्वाद भेद मानता है, ऐसे जो भी भेद तुम्हें दिखाई देते हैं वे मिथ्यात्व में तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं, अगर तुम्हारा मिथ्या भाव चला जाए तो उनमें भेद नजर नहीं आएगा। ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न लेखिए, जब ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है तो ऐसा द्वैतपना नहीं होता कि पुण्य कोई न्यारा भाव है और पाप कोई न्यारा भाव है, दोनों में एकत्व नजर आता है। दो महा अंध रूप दो कर्म बंध रूप, दोनों भाव जो है अंधे हैं, किसी को भी स्वपर का ज्ञान नहीं है, न पुण्य भाव को और न पाप भाव को, इसलिए दोनों अंधकूप हैं और दोनों कर्म बंध रूप हैं, और दुहू को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए, पाप का तो नाश होता ही है, लेकिन पुण्य का भी नाश हो तब मोक्ष मार्ग का प्रकाश होता है और आगे मोक्ष मार्ग बढ़ता है। तो दुहू को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए, शील तप संयम विरति दान पूजा अधिक अथवा असंयम कषाय विषय भोग हैं, यानी स्वभाव हैं वे शील रूप हैं, तप रूप हैं, संयम रूप हैं, व्रत रूप हैं, दान रूप हैं, पूजा आदि के रूप में, और असंयम भाव हैं वे विषय कषाय के रूप में हैं। लेकिन को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग हैं, देखो क्या कहा कि वो जो पुण्य भाव है वो भी कर्म रोग है और जो पाप भाव है वो भी कर्म रोग है, क्योंकि दोनों रोग हैं, दोनों वास्तव में आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, विभाव हैं, पराश्रित हैं, आत्मा को पराधीन करते हैं, आत्मा को बंधन में डालते हैं, आत्मा को छोड़ाते नहीं, इस कारण को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचारत दुविध कर्म रोग हैं, ऐसी बंध पद्धति बखानी वीतरागी देव, वीतराग देव ने ऐसी पद्धति बंध की पद्धति को कथन किया है, निरूपण किया है। आत्म धर्म में कर्म त्याग योग है, जिसे आत्म धर्म अपनाना है, आत्म धर्म प्रकट करना है, उसे कर्मों का निषेध करना होगा, न केवल अशुभ कर्मों का बल्कि शुभ कर्म का भी निषेध करे तो वास्तव में मोक्ष की पद्धति चल सकती है। भव जल तरैया राग द्वेष को हरैया महामोक्ष को करैया एक शुद्ध उपयोग है। तो पुण्य और पाप दोनों तो भव जल पार कराने वाले नहीं हैं, राग द्वेष को हरण करने वाले नहीं हैं, मोक्ष को करने वाले नहीं हैं। एकमात्र शुद्धोपयोग ऐसा है जो भव जल का अभाव करता है, मन संसार में डूबने से बचाता है, राग द्वेष को मिटाता है और मोक्ष को प्रदान करता है। ऐसा शुद्धोपयोग तो मोक्ष का कारण है, लेकिन शुभाशुभ भाव वे संसार में ही डुबाते हैं, राग द्वेष रूप ही होते हैं और मोक्ष के वे कारण नहीं होते हैं, इसलिए उनमें कारण भेद देखना उचित नहीं। कर्म शुभाशुभ दोई पुद्गल पिंड विभाव मल, इनसे मुक्ति न होए नहीं केवल पद पाइए। चाहे शुभ रूप भाव हो चाहे अशुभ रूप भाव हो, ये पुद्गल पिंड रूप हैं, विभाव रूप हैं, मैल रूप हैं, इनसे कभी जीवन मुक्ति नहीं पा सकता। मुक्ति तो मुक्ति की भी प्राप्ति नहीं हो सकती और केवल माने केवल ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। पाप पुण्य का जब नाश होता है तो केवल ज्ञान का प्रकाश होता है, ऐसा आचार्य लिखते हैं। और बनारस छेडाला में दौलत राम जी ने तो ऐसा लिखा वो संवर्त के प्रकरण में, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके संवर लही सुख अवलोके। वास्तव में जिन्होंने पुण्य पाप नहीं किया है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, और पुण्य पाप के भाव से हटकर जिसने आत्मा का अनुभव किया है, तिन ही विधि आवत रोके, आत्मानुभव ही कर्मों का आने का संवर करता है। संवर भाव जो है वो अनुभूति का परिणाम संवर करने वाला है, शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम संवर करने वाला नहीं है। अशुभ परिणाम अशुभाश्रव करने वाला है, शुभ परिणाम शुभाश्रव करने वाला है, इसलिए दोनों वे संवर के कारण नहीं है। तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि, विधि माने कर्म, तिन ही विधि आवत रोके, वे ही कर्मों के आते हुए कर्मों को रोकते हैं। आते हुए कर्मों को ना रोकें तो आश्रव कहलाता है, और आते हुए कर्मों को अगर रोक दिया जाता है तो संवर कहलाता है। तिन ही विधि आवत रोके संवर लही सुख अवलोके, वे जीव आने वाले जो शुभाशुभ कर्मों को रोक देते हैं स्वरूप के आश्रय के बल से, अनुभव के आश्रय से बल से, वे ही संवर प्रकट करते हैं और वे ही सच्चे सुख का अवलोकन करते हैं और वे ही मोक्ष को प्राप्त करते, ऐसा इसमें कहा। तो यहाँ कल जो उसने शिष्य ने चार भेद बतलाए थे, उन चारों का निराकरण करके चारों में एकत्व स्थापित किया। इस पुण्य पाप अधिकार में हमें पुण्य पाप में भिन्नत्व नहीं देखना है, पुण्य पाप अधिकार में श्रद्धा इन दोनों में एकत्व को देखेगी। इस एकत्व को देखना सम्यक दृष्टिपना है, और उनमें व्यवहार से जो भिन्नता कहने में आती है उसको परमार्थ मानना ये अज्ञान भाव है। आगे गाथा 146 नंबर में आचार्य कुंद कुंद स्वामी और खुलासा करते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो जो पुण्य और पाप दोनों हैं वे बंद के हेतु किस प्रकार हैं, एक सुंदर दृष्टांत भी देते हैं। सोने की बेड़ी का और लोहे की बेड़ी का दृष्टांत दे रहे हैं, स्वयं उनके शब्द इस प्रकार हैं। 146 गाथा, सोवर्णियम पीणियणम बंददि कालाय संपिजहे पुरुषम बंददि एवं जीवम सोहमसुहम वाकदम कमम। इसका अर्थ उसकी पद्यानुवाद ऐसा हुआ है, ज्यों लोहे की त्यों कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को, इस रीति से शुभ या अशुभ कृत कर्म बांधे जीव को। सोवर्ण्यम पीणियलम, स्वर्ण की भी नियल माने होती है क्या नाम जंजीर, वह बंधदी बांधती है, सोने की भी जंजीर बांधती है, और कालायस कहते हैं लोहे को, कालायसम पी जय पुरुषम, और लोहे की जंजीर भी बांधती है पुरुष को, बंधन में डालती है। बंधदि एवं जीवम, इस प्रकार वो जीव को बांधती है, और इसी तरह से शुभ भाव और अशुभ भाव, सोहम अशुहम वा ये शुभ भाव और अशुभ भाव भी जो किए जाते हैं उनके द्वारा जो कर्म किया जाता है वह कर्म जीव को बांधता है, जीव को मुक्त नहीं कराता है। इससे पता लगता है कि दोनों कर्म बिना भेदभाव के बंध के हेतु सिद्ध होते हैं, निर्जरा का कोई भी उनमें एक हेतु सिद्ध नहीं होता है, दोनों ही बंध के कारण नजर आते हैं। इसलिए उसमें द्वैत देखना ये मिथ्या भाव है, उनमें अद्वैत देखना चाहिए, दोनों को एक जाति का समझना चाहिए और बंध आश्रव के कारण मानना चाहिए, बंध का कारण बंध का कार्य उनसे संपन्न होता है जानना चाहिए। इस तरह से अगर जो श्रद्धान करता है तो उसकी दृष्टि से मिथ्यात्व मिथ्या अभिप्राय मिथ्या वासना निकल जाती है और पुण्य पाप से उसमें वृत्ति उदासीन हो जाती है, और वह उदासीन वृत्ति जब पुण्य पाप में नहीं लगती है तो स्वभाव में लगती है, आत्मा का आश्रय लेती है, आत्मा का अनुभव करती है और उस आत्मानुभूति के बल से संवर भी प्रगटाती है, निर्जरा भी प्रगटाती है और मुक्ति को भी अवश्य प्राप्त कराती है। इस तरह से शुभ और अशुभ में जो पुरुष भेद करता है वो उसका अज्ञान है। वास्तव में तो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों एक ही काम करती हैं, वे बांधने का काम करती हैं, कोई भी बेड़ी छोड़ने या मुक्ति का कार्य नहीं करती। इसलिए दोनों कर्म बंधन के कारण होने से उनका निषेध किया जाना चाहिए, उन्हें उपादेय नहीं मानना चाहिए, उन्हें हे मानना चाहिए, ये बात इसमें कहिए। इसके बाद आगे ये टीका में भी ऐसा लिखा अमृतचंद्राचार्य ने, एक बिल्कुल एक लाइन की टीका लिखी, और टीका अगर संस्कृत में देखें तो एक लाइन ऐसी पड़ी हुई है उस 140 गाथा के नीचे, शुभम अशुभम चा, माने शुभ और अशुभ कर्म अविशेषेणैव बिना भेद के ही पुरुषम बधनाति, भेद किए बिना भी शुभ कर्म भी बांधता है और अशुभ कर्म भी बांधता है, क्योंकि उनका स्वभाव बांधने का है, उनका स्वभाव किसी को छोड़ने का नहीं है। इसलिए बंधत्व अविशेषात, उन दोनों में बंध की अविशेषता मन भेद न होने से कांचन कालायस, कांचन माने सोने की बेड़ी और कालायस माने लोहे की बेड़ी, निगल माने बेड़ी, वत बंधन ही होता है, उनसे कभी भी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए आगे उन्होंने लिखा अथ उभयम कर्म प्रतिषेध यति, इसलिए हम तो इन दोनों कर्मों का निषेध करते हैं, कोई भी कर्म को उपादेय और करने लायक नहीं मानते। एक अलग बात है साधक अवस्था में जब बुद्धि पूर्वक जीव अपने शुद्धोपयोग में नहीं टिकता है और शुभ बाहर आता है तो वो बुद्धि पूर्वक अशुभ से बचने का प्रयास करने के लिए उस शुभ का आलंबन लेता है, लेकिन उस आलंबन के काल में शुभ में भी पराधीनता ही देखता है और अपने अनुभव में जाने में ही स्वाधीनता देखता है। इसलिए न तो उसकी श्रद्धा बिगड़ती है, आश्रय लेने पर भी श्रद्धा नहीं बिगड़ती, और आश्रय लेने पर एक लाभ और ये हो जाता है कि पाप में जाने से बच जाता है, तो वो शुभ भाव निकटवर्ती होने के कारण उस शुभ भाव का भी अभाव करके शुद्ध में ही जाता है, नीचे नहीं गिरता है। और जो जीव उसमें उपादेय बुद्धि मान लेते हैं वे शुभ में जाके अटक जाते हैं, वे शुद्ध की दृष्टि भी नहीं कर पाते और उस शुद्ध भाव को पा भी नहीं पाते, प्रकट भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन दोनों में हे बुद्धि रखनी चाहिए, इनको उपादेय नहीं मानना चाहिए, इसलिए दोनों कर्मों को निषेध करते हैं। अब वो निषेध करने के लिए कुंद कुंद आचार्य एक अंगली गाथा 147 नंबर की गाथा लिख रहे हैं। देखिए उनकी गाथा पढ़ता हूं और कुंद कुंद आचार्य उनमें क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो भी अपन जरा विचार करेंगे, तो उसमें दृष्टांत सहित भी शब्द कहे गए। तम मादु कुशीले हिये रागम मा कुण वा मा वसं सगम साहीणो हि विनाशो कुशील संसग रायेण, ये कहा इससे करो नहीं राग वा संसर्ग उभय कुशील का, इस कुशील के संसर्ग से है नाश तुझे स्वातंत्र का। इसलिए इस कुशील में, दोनों प्रकार के उभय कुशील में न राग करो और न उनका संसर्ग करो। राग भी उसमें छोड़ो और उनकी संगति भी छोड़ो। इस कुशील का अगर संसर्ग करोगे तो तुम्हारी जो स्वतंत्रता है, तुम्हारा जो स्वभाव है, उसका नाश होगा, उसका घात होगा। ऐसा इस गाथा में कुंद कुंदाचारी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। जो जीव नहीं मानते, माने वे बेस्कुंद कुंदाचारी द्वारा दी गई निर्मल दृष्टि का अवहेलना करते और वे मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाते। इसलिए दोनों में हमें ये निर्णय करना है कि पुण्य भाव और पाप भाव कोई भी उपादे नहीं है। व्यवहार में कथनचित आलम्बन लेने के लिए जरूर आचार्य अनुमति देते हैं, क्योंकि वो प्रयोजन इतना है कि वो जीव उसका आलम्बन लेकर पीछे माने पाप से तो बच जाए और पुण्य में ठहर कर उग्र पुरुषार्थ करे और पुण्य से भी हटके स्वभाव में चला जाए। इतना प्रयोजन विचार करके उस पुण्य बंद को या शुभ भाव को शुद्ध का कारण भी उपचार से कहने में आता है। परमार्थ से वो बंद का ही कारण है, वो वास्तव में संवर निद्रा का कारण नहीं है। लेकिन कथन भेद हैं इस प्रकार के। व्यवहार में जब हम उसी को कारण को कहते तो पुण्य से परंपरा मोक्ष का कारण कहने में आता है, और जब हम निश्चय से विचार करते हैं तो उसको साक्षात मोक्ष का अंतराय आचार्य कहते हैं। इस तरह से आचार्यों की नयाश्रित जो वाणी है, उनके मर्म को जो पहचानते हैं, वे ही वास्तव में आत्म धर्म को प्रकट कर सकते हैं, वे ही श्रद्धा को सुधार सकते हैं, वे ही ज्ञान को सुधार सकते हैं, और वे ही आचरण के द्वारा और स्वाधीन बन सकते हैं। इस तरह से यहाँ ये 147 नंबर की गाथा में इतनी चर्चा आई। इसकी जो टीका है उसमें भी यही इन्होंने कहा, जैसे कुशील मनोरम अमनोरम हथनी रूपी कुट्टिनी। एक कुट्टिनी मालूम किसको कहते हैं, जो ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन ओरिजिनल की तरह दिखता है, ओरिजिनल का भ्रम पैदा करता है, उसको कुट्टिनी कहा। माने हाथी तो नहीं है, हथनी तो नहीं है, पर वो हथनी का आकार दिखाई देता है और उसे देखने पर हाथी को ये भ्रम हो जाता है कि ये रियल हथनी है कि कोई बनावटी है, वो ख्याल नहीं होता उसको, तो रियल नजर आती है और वो उसके समीप जाने का प्रयास करता है। वो समीप में जाने के प्रयास में गड्ढे में पड़ करके बंधन में पड़ जाता है। इसलिए टीका में ये लिखा, जैसे कुशील मनोरम अमनोरम हथनी रूपी कुट्टिनी के साथ। कुशील लिखा है यानी शुभ भाव भी कुशील है और अशुभ भाव भी कुशील है, यानी जो ठगने वाली हथनी है, चाहे वो कुरूप हो अथवा कि स्वरूप हो, दोनों रूपों का प्रयोजन एक ही है, ठगने का है, उसको गड्ढे में डालने का है। इसलिए मनोरम अमनोरम हथिनी रूपी कुट्टिनी के साथ हाथी का राग और संसर्ग बंद का कारण होता। ऐसे ही शुभाशुभ जो भाव हैं, अगर कोई जीव उनमें राग करता है, उनका संसर्ग करता है, तो उसे बंद ही होता है, वो कर्मों से छूटता नहीं है। इस कारण से शुभाशुभ कर्मों के साथ में आचार्य कहते हैं कि ना तो राग करो और ना ही उनका संसर्ग करो। अगर राग करोगे तो संसर्ग भी करोगे, और संसर्ग करोगे तो बंधन में पड़ोगे। अगर बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो राग से संसर्ग मत करो, क्योंकि जो राग है वो एकमात्र बंध का कारण है। चाहे शुभ राग हो, चाहे उत्कृष्ट राग हो, चाहे पंच परमेष्ठी का राग हो, और तो ठीक शुद्धात्मा का भी राग क्यों ना हो, वह राग भी बंध का कारण है, वो निर्जरा का कारण नहीं। निर्जरा तो आत्मा की अनुभूति, वो अनुभूति का परिणाम ही निर्जरा का कारण है। बाकी पुण्य पाप के परिणाम तो एकमात्र बंध के ही कारण हैं। इस कारण से ज्ञानी जीव उनको नहीं चाहते, अथवा ज्ञानी जीव उसको हे रूप निरूपण करते हैं, उसका निषेध करते हैं, उसमें धर्म बुद्धि करने का निषेध करते हैं। भले कदाचित कमजोरी वश आश्रय लेना पड़े, तो भी वो आश्रय लेने पर भी उसको उपादे नहीं मानते, बल्कि उसको हेय मानते हैं। ऐसे ज्ञानी जीवों की निर्मल ज्ञान की और भेद ज्ञान की महिमा है। उस अभाव में कदाचित आरंभ आलम्बन भाव का करते हैं, तथापि उनकी दृष्टि इस बात में निर्मल दृष्टि से जब वो देखते हैं तो शुभ भाव को उपादे न देखकर हे देखते हैं, और एक आत्मा की अनुभूति को ही उपादेय देखते हैं। इसमें दोनों की के कार्य बनते हैं। आत्मानुभूति को उपादेय देखा तो श्रद्धा सम्यक होती है, और आचरण में भी शुभ का भले आचरण हो लेकिन दृष्टि तो पड़ी है अपने शुद्ध स्वभाव पर, तो दृष्टि के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो निरंतर ये उद्यम उनकी वर्तता है कि वो शुभ भाव से हटे और शुद्ध भाव में चला जाए। इसका उसका पुरुषार्थ बढ़ता है, और पुरुषार्थ में जब वो सफल होता है तो अनुभूति के मार्ग में जाके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। और अगर कमजोरी वश कदाचित बाहर आता है तो वो बाहर आकर के शुभ का आलम्बन लेता है, अशुभ में नहीं जाता। ज्ञानी को ये भी समझदारी होती है कि पर्याय में भी ये ध्यान रखना कि पाप को अपनाना हितकारी होगा और वो शुद्ध का कारण बनेगा, कि पाप से हटना शुद्ध का कारण बन सकेगा। और कारण भी व्यवहार से कहने मात्र है, परमार्थ कारण तो शुद्ध का शुद्ध ही होता है। शुभ कभी शुद्ध का कारण परमार्थ से नहीं होता, पर व्यवहार से उसको इसलिए कहते हैं कि वो शुभ भाव से ही जीव शुद्ध में जाता है। शुभ को छोड़ के शुद्ध में जाता है तो जिसे छोड़ा जाता है उस पर कारण पने का आरोप किया जाता है। अशुभ छोड़कर आज तक अनंत काल में कोई जीव शुद्धोपयोग में नहीं गया। जितने जीव शुद्धोपयोग में गए हैं उसके पूर्ववर्ती भाव शुभ ही होता है, लेकिन उस शुभ भाव को लेके कोई शुद्धोपयोग में नहीं जाता है, बल्कि शुभ भाव को छोड़कर अपने आत्मा के अनुभव वाले शुद्धोपयोग में प्रवेश करता है। निकटवर्तीपना देखकर आगम में उसको धर्म का कारण मोक्ष का कारण व्यवहार से कहते हैं। व्यवहार की भाषा का निषेध नहीं करना, व्यवहार की भाषा का मर्म समझना चाहिए। और कोई व्यवहार से आचार्य बोले या ज्ञानी बोले तो उस ज्ञानी की बात को समझना चाहिए, अभिप्राय को, शब्द पकड़कर ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। अरे जी उसको धर्म का कारण कह रहे हैं, अरे ये पुण्य भाव को मुक्ति का परंपरा मुक्ति का कारण कह रहे हैं, और वो कौन कह रहा है? कोई सामान्य जीव नहीं कह रहा है, तीर्थंकर आचार्य की परंपरा वाले बड़े बड़े आचार्य ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन उस प्रयोग करने का प्रयोजन इतना है, ये जीव शुभ अशुभ को समान जान करके अपनी प्रवृत्ति एकांत पाप में ना करे। अगर एकांत पाप में अपनी प्रवृत्ति करेगा तो नियम से ये शुद्धोपयोग नहीं पा सकेगा, और पाप प्रवृत्ति की वृद्धि हो जाने पर मरकर नरक निगोद आदि में ही प्रवर्तन करेगा, चांस भी चूक जाएगा आत्म कल्याण का, इतना बताते हैं। लेकिन जो जीव शुभ में प्रवर्तन करके उसमें सुख मानने लगते हैं, उसको उपादेय मानने लगते हैं, उसके लिए आचार्य कहते हैं कि तुम शुभ में मगन होगे और उसकी रुचि करोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन भी होने वाला नहीं है, और सम्यक दर्शन हुए बिना कितना ही आचरण करो, मुनि का भी आचरण करो, तो भी वो आचरण भाव से पार कराने का कारण नहीं बनेगा। वह आचरण भी संसार परिभ्रमण करेगा, कराएगा और संसार को बढ़ाएगा। अनंत बार जीव ने इस निर्मल श्रद्धान के बिना बहुत मुनि व्रत का आचरण किया है, तो भी ये नौवें ग्रह व्यक्ति तक उस आचरण से चला गया है, तथापि संसार का अभाव करने में असमर्थ रहा है। छेड़ालाकार ने लिखा है, अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत बिरिया पद पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। यानी अंतिम ग्रह व्यक्ति के जीव द्रविलिंगी मुनि की अवस्था धारण करके मिथ्या अभिप्राय सहित महाव्रतों का आचरण करके शुभ भाव के निमित्त से नौवें ग्रहवेग तक जाके पैदा हुआ है, लेकिन पर सम्यक ज्ञान न लाधो, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, दुर्लभ निज में मुनि साधो, इसलिए मुनिराज को निज की साधना दुर्लभ बनी रही, ऐसे द्रविलिंगी मुनिराज को। इस तरह से पुण्य पाप अधिकार बेहद महत्वपूर्ण अधिकार है, इस अधिकार को पढ़कर दृष्टि सुधारना है, आचरण नहीं बिगाड़ना है। ऐसा जान के करे चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, एक ही बात है। अशुभ में जो परवर्तेगा और उसमें से शुभ अशुभ को एक जानकर चाहे अशुभ करो चाहे शुभ करो में कोई मतलब नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा जान के जो अशुभ में परवर्ते हैं वे जीव निश्चयाभाषी होते हैं, और शुभ में परिवर्तन करके जो ये मानते कि मैं धर्मात्मा हूँ और शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करते हैं, शुद्धात्मा की दृष्टि नहीं करते हैं, ऐसे जीव व्यवहाराभासी होते हैं। वे व्यवहार में ही परमार्थ की कल्पना करके डूबे रहते हैं, उन्हें परमार्थ की कभी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए हर बात का जो निरूपण है वो निरूपण में अनेकांत लगाना है, सापेक्षता लगानी है, दृष्टि का क्या कथन है और आचरण में क्या परिस्थिति चलती है उस सबको देखने और समझने की सामर्थ्य सम्यक ज्ञान में पाई जाती है। और वो सम्यक ज्ञान उपादेय को भी जानता है, वो सम्यक ज्ञान परिस्थिति बस अवलंबन किसका लेना है इसको भी जानता है वर्तमान पर्याय में, और ये जानकर उपादेयपना कहाँ रखना है, पुरुषार्थ को कहाँ ले जाना है, अपनी दृष्टि को कहाँ ले जाना है, स्वभाव में ही ले जाना है, स्वभाव का ही पुरुषार्थ करना है, स्वभाव का पुरुषार्थ नहीं होगा तो स्वभाव में टिकेगा, और स्वभाव में भी अगर लंबे काल टिक जाएगा तो वहां से भी गिरकर अशुभ में आ जाएगा। इसलिए स्वभाव का जो समय है, जो काल है, जो आलम्बन का कदाचित उपदेश है, उसके व्यवहार को समझना चाहिए और उसमें से परमार्थ निकालकर शुद्धोपयोग में निरंतर प्रवर्तन करने का उद्यम करना चाहिए, तो पुण्य पाप को समझने का एक फायदा है। जो पुण्य पाप अधिकार पढ़ के अपने आचरण को बिगाड़ते हैं वे निश्चयावासी दुर्गति के पात्र बन के नियम से नरक और निगोद को प्राप्त करते हैं, और जो पुण्य पाप अधिकार को पढ़ के अपनी दृष्टि सुधारते हैं और दृष्टि को निर्मल बना करके नजर अपनी नजर अपने स्वभाव पर ज्ञायक स्वभाव पर रखते हैं, वे जीव नियम से उस शुद्धात्मा को प्राप्त करते हैं और मोक्ष दशा को प्राप्त करते हैं। इसलिए इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आगे इन्होंने अब भगवान कुंद आचार्य स्वयं दृष्टांत दे के समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म निषेध करने लायक हैं। ये 148 नंबर की गाथा में ये बात लिखते हैं। सीधी सीधी गाथाएं हैं, बिल्कुल कठिन गाथाएं नहीं है, सरल गाथाएं हैं, टीका भी बिल्कुल सरल है। इस 148 गाथा में अब दोनों कर्मों का निषेध करते हैं, दृष्टांत द्वारा वो निषेध को समझाते। क्या दृष्टांत दिया? जहणाम को भी पुरुष हो, जैसे कोई पुरुष कुच्छीय शीलम जनम व्याणिता, कुच्छीय माने कुशील आचरण का आचरण वाला, उसे व्याणिता माने जानकर, बज्जे ही तेण समयम, उसी समय उसको छोड़ता है। अरे ये इसका आचरण खराब है, इसकी संगति करूंगा तो मेरा भी आचरण बिगड़ेगा और मैं भी बदनाम होऊंगा और मैं भी पतन की ओर जाऊंगा। इसलिए जैसे कोई पुरुष किसी को कुशील का आचरण करने वाला जानता है तो तत्काल उसको छोड़ता है, और तेण समयम संसग्गम राग करणम चा, दोनों का निषेध करता है, राग उसके प्रति राग का भी निषेध करता है और उसका संसर्ग माने संगति करने का भी निषेध करता है। देखो जिससे नुकसान हो उसका राग भी नहीं बरतना चाहिए और उसकी संगति भी नहीं करना चाहिए। जैसे कुगुरु कुदेव कुधर्म हैं, अब इनकी संगति में आत्मा अनंत काल से भटका और भटकता रहेगा तो ना तो उनका राग करना चाहिए और ना ही उनका संसर्ग करना चाहिए। लेकिन सच्चे देवशास्त्र गुरु के संबंध में ये बात है कि श्रद्धान में तो सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी पर जानना चाहिए और उनके आश्रय से भी पराधीनता होगी, लेकिन उन्होंने जो स्वाश्रय मार्ग दिखाया है उनका आश्रय लेके स्वाश्रय मार्ग में जो आएगा उसे स्वाधीनता की प्राप्ति होगी और वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से आत्माश्रित बन सकता है, आत्म कल्याण कर सकता है। इस तरह से यहाँ मूल गाथा में ऐसा लिखा कि जिस भांति कोई पुरुष कुत्सित शील जन को जान के संसर्ग उनके साथ त्यों ही राग करना परित्यजे, माने कोई पुरुष किसी कुत्सित माने विपरीत आचरण वाले को जान लेता है तत्काल सावधान हो जाता है और उससे दूर रहता है, न उससे राग करता है न उसकी संगति करता है, संगति भी छोड़ देता है और राग तो उससे भी पहले छोड़ देता है, क्योंकि राग न छोड़े तो संगति नहीं छूटती है और राग छोड़ दे तो फिर संगति छूटे बिना रहती नहीं है। इसलिए पुण्य पाप का परिणाम को बंधन का कारण जानकर, कुशील जानकर इनकी तरफ का राग छोड़ना चाहिए और इनकी संगति भी छोड़ना चाहिए, और जब इनका राग छोड़ेगा इनकी संगति छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ, अपने स्वभाव के प्रति धर्मानुराग करेगा, धर्मी आत्मा के प्रति राग उसको होगा और उसका वह राग भी जब धर्मी आत्मा में तन्मय होगा, अभेद तन्मय होगा तो राग भी नष्ट हो जाएगा और एकमात्र अनुभूति में बीतरागता, शांतता निराकुल आनंद, निर्विकल्प आनंद, ऐसी आत्मा की अनुभूति चलेगी और वही अनुभूति मोक्ष का मार्ग है, ऐसा बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा है। उन्होंने तो ऐसा लिखा है कि भाई ये जो मुक्ति का मार्ग है वो वास्तव में इस तरह सा है कि वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव याको नाम, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ऐसे मोक्ष स्वरूप अनुभव को निरंतर अपनाना चाहिए और राग द्वेष में पुण्य पाप के परिणामों में राग नहीं करना चाहिए। छेडालाकार ने जब आश्रो तत्व की भूल बताई तो उसमें यही लिखा कि पुण्य भाव हो चाहे पाप भाव हो, वो दोनों वास्तव में बंधन के कारण है, संसार परिभ्रमण के कारण है, इसलिए ज्ञानी जीव इनमें कभी राग नहीं करता है और दोनों को बंध का कारण जानकर उन्हें अपनाता नहीं है। शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। अज्ञानी के ये हालत है कि शुभ बंध में रति करता है, अशुभ बंध में अरति माने द्वेष करता है और अपने आत्मा के पद को तो भूल ही जाता, वो तो उसकी दृष्टि में आता ही नहीं। वो दृष्टि में आवे ये मूल कार्य है और वो दृष्टि में आवे तो पुण्य पाप से भिन्न दृष्टि में आना चाहिए, पुण्य पापमय दृष्टि में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपना जो स्वरूप है वो चेतनमय है, वो अनादि अनंत चेतन स्वभावी ज्ञायक आत्मा है। वो आत्मा, ज्ञायक आत्मा पुण्य पाप से रहित ही अनुभव में आता है, उसे देखने वाले को पुण्य पाप नहीं दिखता और पुण्य पाप में एकत्व बुद्धि करने वाले को आत्मा नहीं दिखता। इसलिए जिन्हें अपने आत्मा का अनुभव करना हो, जिन्हें अपना आत्मा पर्याय में प्रकट करना हो, उन्हें ये पाप पुण्य कर्म और पाप कर्म में भेद जानना चाहिए और उनसे भिन्न अपना ज्ञायक आत्मा जानना चाहिए, वही दृष्टि का विषय बनाना चाहिए। ज्ञायक आत्मा दृष्टि का विषय है, उसमें शुभाशुभ भावों को शामिल करने की जरूरत नहीं। अरे शुभाशुभ भावों की तो बात कौन करे, जो भाव निर्मल भी हैं लेकिन परिवर्तनशील हैं वे भी दृष्टि के विषय में नहीं लाना, और जो भाव त्रिकाली हैं वे भी अगर भेद विकल्प पैदा करते हैं तो उनके भेद विकल्पों का भी त्याग होना चाहिए, तो वो दृष्टि का विषय बन जाता है। ये पुण्य पाप की चर्चा चले वहां भी दृष्टि का विषय खोजा जा सकता है, वशर्ते कि दृष्टि निर्मल हो, तो वहां ये देखेगी कि आश्रय करने योग्य कौन है। आत्मा का त्रिकाली स्वभाव आश्रय करने योग्य है कि आत्मा की पर्याय में निर्मलता जो प्रगटी वो आश्रय करने योग्य है, पुण्य पाप तो आश्रय करने योग्य हो सकते ही नहीं है। ऐसा दृष्टि निर्मल होती है तो चाहे पुण्य पाप अधिकार का अनुशीलन करो, उसमें भी दृष्टि की निर्मलता आती है, और जीव अजीव अधिकार का अनुशीलन करो, उसमें भी जीव और अजीव का भेद ज्ञान के द्वारा दृष्टि निर्मल होती है। कर्ता कर्म का अनुशीलन करो तो उसमें कर्तृत्व का अभाव होकर ज्ञातृत्व का सद्भाव के द्वारा भी दृष्टि का विषय ख्याल में आता है, और अब पुण्य पाप अधिकार के द्वारा भी पुण्य पाप भाव को विकारी भाव जानकर, आश्रव भाव जानकर, बंध भाव जानकर, पराश्रित भाव जानकर इनका आलम्बन छोड़ना और अपनी स्वाधीनता को पाने के लिए अपनी दृष्टि अपने त्रिकाली स्वभाव पर लगाना, ये पुण्य पाप अधिकार का समझने का पढ़ने का प्रयोजन है। और इस प्रयोजन से जो इसे पढ़ेगा समझेगा उसे समय सार का मर्म ख्याल में आएगा, और मर्म जिसे ख्याल में आएगा वो कर्म से बच करके धर्म में प्रवेश कर जाएगा। जो कर्म करावे वो धर्म नहीं है, और जो धर्म है उसमें कर्म होता नहीं है, उसमें अनुभव होता है, अनुभव धर्म है, और मन वचन काया की क्रिया वो कर्म है। कर्म बंध रूप है, संसार रूप है, इसलिए इसे हेय जानना, इसको उपादेय नहीं मानना और एक शुद्ध आत्मा को उपादेय मानना, यही पुण्य पाप अधिकार पढ़ने का फल है और यही हमारे लिए कार्यकारी है, यही करने लायक है। गुरुदेव तो जब जब बोला करते थे, चाहे पुण्य पाप पे शुरू करें तो यहाँ से शुरू करते थे कि ये वास्तव में भगवान आत्मा तो पुण्य पाप से रहित है, भगवान आत्मा पुण्य पाप रूप है ही नहीं, पुण्य पाप का परिणाम भगवान आत्मा के स्वभाव में है ही नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पुण्य पाप परिणाम ने कभी भगवान आत्मा को छुआ नहीं। अरे भगवान आत्मा को पुण्य पाप का परिणाम तो जाने दें, जितने भी अपूर्ण भाव हैं, जो अनित्य भाव हैं, वे भी भगवान आत्मा ध्रुव आत्मा को छूते नहीं। छूते नहीं माने एक मेक होते नहीं, ख्याल में आएगा नहीं, ये एक मेक पना उनमें होता नहीं, उनका स्वभाव भेद बना ही रहता है। और ये भेद जिसकी दृष्टि में आता है, वह जीव अपनी आराधना करके, अपनी पर्याय में धर्म प्रकट करके और मोक्ष दशा को पाता है, सिद्धत्व को प्राप्त करता है। ऐसा ये पुण्य पाप अधिकार का अध्ययन करके हम सिद्धत्व को प्राप्त करें, इस भावना से अपन ने ये चर्चा यहाँ की। अभी अपने पास 10 या 11 मिनट का समय है, आपके जो भी क्वेश्चन हो आप इस संबंध में अवश्य रखें।
पंडित जी,
हाँ जी,
एक क्वेश्चन है कि जो पुण्य पाप दोनों विभाव परिणति से उत्पन्न हुए हैं, वो तो अज्ञानी को ऐसा विभाव परिणति कहा जाता है, लेकिन तो ज्ञानी को क्या कहा जाएगा, क्योंकि ज्ञानी को भी तो पुण्य के भाव भाव तो आते हैं।
बराबर आते। सुनिए, ऐसा है, ज्ञानी की दृष्टि में पुण्य पाप नहीं आते, ज्ञानी की दृष्टि में शुद्ध अपना शुद्धात्मा ही आता है। वो अपने नजर में शुद्धात्मा को बसा के रखता है और किसी को नहीं बसाता है। लेकिन ये जो कमजोरी से राग आता है, उस राग को भी अपनी दृष्टि में हे जानता है, हे देखता है, और हे देखने के कारण अपना पुरुषार्थ उग्र करता है, और उग्र पुरुषार्थ करके अपनी दृष्टि जब अपने स्वभाव में लगाता है, तो वो जो पुण्य पाप के परिणाम जो आते हैं, वे जाने के लिए आते हैं, वे रहने के लिए नहीं आते, और ज्ञानी की दृष्टि वहां से हट जाती है। हम तो ये कहते हैं, घर में मेहमान आए और तुम अपनी दृष्टि हटा लो, अपने काम में लग जाओ, मेहमान चला जाएगा। इस शुभ अशुभ भाव मेहमान की तरह आते हैं, और जो आत्मा अपने काम में लग जाता अनुभव के कार्य में, वे उस आत्मा को छोड़ के चले जाते, ऐसा है।
पंडित जी, जो 147 गाथा की टीका में मनोरम अनोरम, मनोरम और अमनोरम हथनी का जो एग्जांपल दिया, दृष्टांत दिया, इसमें मनोरम अमनोरम हथनी अशुभ राग की प्रतीक है और मनोरम हथनी शुभ भाव की प्रतीक है, ऐसा कहने का
बराबर इनका आशय ये है कि वो हाथी जो काम के वशीभूत है, उसके आकर्षण के दो कारण हो सकते हैं। अगर अत्यधिक कामाशक्त है तो वो हथनी भरोसे दिखना चाहिए, चाहे वो सुंदर हो या ना हो, वो उसकी तरफ दौड़ जाएगा। थोड़ा जो 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 तुम्हारे से बाहर के सौंदर्य पर रिझने वाला है, उसके लिए रिझाने का साधन अगर वो सुंदर नहीं हुई तो वो उस तरफ रिझेगा नहीं, और सुंदरता हुई तो वो रिझ जाएगा। तो ये जो पुण्य भाव है, अपने अनुकूलता से, अपनी सुंदरता से इस जगत के जीवों को अपनी तरफ रिझाता है। मेरे ख्याल से तो वो जो असुंदरता है, वो उतनी खतरनाक नजर नहीं आती है, क्योंकि वो आकर्षण का कारण नहीं बनती है। लेकिन ये सुंदरता ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो सबको आकर्षण का कारण बन जाती है। इसलिए जो अशुभ भाव है, पाप भाव है और पुण्य भाव है, ये दोनों भाव वास्तव में सुंदर हों या असुंदर हों, ये जीव को बंधन में डालते हैं। आकर्षण चाहे मनोरम देख करके किया हो या अमनोरम के प्रति किया हो, दोनों कार्य एक ही कार्य की सिद्धि करते हैं, यानी उसे बंधन में डालते हैं। अब एक चतुर हाथी का भी दृष्टांत आगे आया है, उस चतुर हाथी में ये दृष्टांत आया है और इन्हीं दोनों हथनियों का दृष्टांत दिया है। उनका चटुल मुखी माने सुंदर मुख वाली, या अचटुल मुखी माने जो कुरूप वाली, दोनों हथनियों को, दोनों प्रकार की कोई भी हथनी इसके पास आती है और ये सावधान रहता है। इसे मालूम है कि अगर मैं इसकी तरफ जाऊंगा, गड्ढे में गिर जाऊंगा, हमेशा के लिए बंधन हो जाएगा, तो वो इतना सावधान रहता है कि वो उसे आकर्षण करने का भी उपाय करे, पर वह उसकी तरफ जाता नहीं, वहां उसमें राग करता नहीं और उसका संसर्ग भी करता नहीं, इसलिए वो बंधन से बच जाता है। ऐसी गाथा और ऐसी टीका भी अभी आगे आई है, वो आगे आएगी और अपन उसको देखेंगे। तो वो मनोरम पुण्य का प्रतीक है, अमनोरम कहना चाहिए पाप का प्रतीक है। अभी भी दुनिया में पुण्य के उदय को सब मनोरम मानते हैं और पाप के उदय को कोई भी भला नहीं मानता है। बाहर के अगर पंचेंद्रिय विषयों के साधन जुड़ जाएं तो सबको सुख बुद्धि हुआ करती है, और बाहर में गरीबी आ जाए, कुछ भी साधन ना हो पंचेंद्रिय विषयों का, तो उसे ये लगता है अरे हम तो बिल्कुल असमर्थ हैं, हम असहाय, हमारे पास तो कुछ है नहीं। और जिसके पास होता है वो ये मानता है कि मेरी तो सब वैभव है, मेरे कोई कमी है ही नहीं, मैं तो सर्व प्रकार से सुखी हूँ। ये धर्म भी करना उनके लिए है जो दुखी हों, हमें तो कोई सब प्रकार का सुख है। आज भी सब जीव 24 घंटे जो लगे हुए हैं, ये जो पुण्य के वैभव को पाने में लगे हुए हैं, पाप का तो कोई उदय चाहता नहीं है, उससे हटने के लिए लगे रहते हैं, पुण्य का उदय सब चाहते हैं, उसकी उसको साधन जुटाने में लगे रहते हैं, और शुद्ध की तरफ जाने का तो उनका लक्ष्य होता ही नहीं, क्योंकि जो अभी बाहर कर्मों में ही रीझ गया है वो निष्कर्म अवस्था के प्रति कैसे रीझ सकता है। इसलिए मनोरम अमनोरम हथिनी का दृष्टांत दिया है, और वो भी असली हथिनी नहीं है, बनावटी हथिनी, कुट्टिनी शब्द डाला है। कुट्टिनी का अर्थ होता है उन जैसी दिखे, पर वो नहीं है, बस दिखती है और अपने अपने दर्शन के द्वारा ही वो आकर्षण करती है, और वो व्यक्ति वो हाथी उसकी तरफ जाता है, और उसे ये खबर नहीं कि जहाँ वो स्थापित की गई है हथिनी वहाँ गड्ढा है बहुत बड़ा, वो उसे खबर अगर नहीं रहती है वहाँ जाके गिर जाता गड्ढे में, और न वो उसको प्राप्त कर पाता है न कुछ कर पाता है, बल्कि दुखी होता रहता है। ऐसी जगत के जीवों का हाल है जो पुण्य में आकर्षित होकर के पुण्य के वैभव के जोड़ने में लगे रहते हैं, वे बिचारे वो सारे वैभव को न तो जिंदगी भर भोग पाते हैं, और भोग लें तो पाप बांधते हैं, और न भोगें और बिना भोगे छोड़ के जाते हैं तो पाप बांधते हैं, और उसके जोड़ने में भी पाप बांधते हैं। ऐसा अगर संतोष जागृत हो जाए तो बहुत बड़े भारी पाप भाव से तो जीव बच सकता है, लेकिन संतोष नहीं है, जिसके खाने को नहीं है वो अभी यही चाहता है कि मेरा पेट भर जाए, और जिसके खाने को है वो चाहता है हमारी पेटी भर जाए, पर पेटी इतनी बड़ी है कि 3 लोग का साम्राज्य मिल जाए तो भी इसकी पेटी भरने वाली नहीं है, क्योंकि वो तृष्णा की पेटी है। ऐसी जगत की स्थिति है, और वो तृष्णा शुभ भावों के प्रति हुआ करती, उनके फल के प्रति होती है, अशुभ के प्रति नहीं होती है। इस तरह से वो दृष्टांत भी आकर्षण और अनाकर्षण वाला दृष्टांत यहाँ हथिनी का दिया गया।
एड्रेस
टाइम से एक मिनट एक सवाल लो
अनुवेद।
राग और संसर्ग, राग और संसर्ग जो बताए यहाँ, तो राग श्रद्धा अपेक्षा और संसर्ग चारित्र अपेक्षा, ऐसा ले सकते हैं?
देखो ऐसा है, राग वो संसर्ग का कारण है, यानी यूं कहना चाहिए राग कारण है और संसर्ग की अवस्था कार्य है, इसलिए जिसने कारण को ही त्याग दिया है वो कार्य को भी त्याग देता है। तो श्रद्धा में तो राग को उसने त्याज्य जाना ही है, और राग को त्याज्य जाना है तो राग का जो कार्य है संसर्ग बढ़ाना वो भी उसका त्याग हो जाता है। लेकिन ये बात जरूर है, देख कोई भी वस्तु को दो दृष्टि से देखना, एक होती है अपनी कहना चाहिए श्रद्धान की दृष्टि, और एक होती है बाह्य चारित्र में परिणमन की दृष्टि। परिणमन की दृष्टि में ये देखा जाता है कि जीव पाप से बचने के लिए शुभ राग का आलंबन लेता है। आप देखिए ना, हमको अगर संसार से बचना है तो हमने अगर गुरुदेव के इन प्रवचनों का आश्रय नहीं लिया होता, जो कि शुभ भाव है, धर्म भाव नहीं है ऐसे में, लेकिन अगर इसका आश्रय नहीं लिया होता तो हमें जो सन्मार्ग है वो कैसे मिलता। इसलिए आश्रय करने के लिए छूट दी है कि मगर प्रयोजन में भूल नहीं होना चाहिए। दृष्टि में तो जो आश्रय है, चाहे जिनेंद्र भगवान का भी आश्रय क्यों ना हो, वह आश्रय पराश्रय करने वाला है, और जहाँ स्वभाव की दृष्टि अगर जाग गई तो वो आश्रय तुम्हारे लिए स्वाधीनता प्राप्त कराने वाला बनेगा। इस कारण से ये संसर्ग को और राग को प्रयोग किया है, उसमें हे बुद्धि करना दोनों में, ये दृष्टि का विषय हो गया, और उसमें आचरण में भी ना तो उसे चाहना ना उसका संसर्ग करना, ये आचरण का विषय हो गया।
पंडित जी।
हाँ जी।
हाँ जी, एक एक प्रश्न है कि वो बेंसी के वचनामृत में एक शब्द आता है के अशुभ में जाना नहीं है और शुद्ध का पता नहीं है, तो तीसरा शुभ भाव ही बचा जिसको अपने ये अपना पुरुषार्थ कर रहा है तो अभी उसको शुद्ध का पता नहीं है और अशुभ में उसको जाना नहीं है, तो ये शुभ भाव जो उसको आता है तो क्या उसको अपने ज्ञान का नहीं समझकर अपनाए, उसको यही बुद्धि रखकर समझाइए, उसको उसके साथ कैसा रखे ये थोड़ा।
हाँ सुनिए, बराबर अच्छा प्रश्न है। वो वास्तविक बात ये है कि वो उसे अशुभ में जाना नहीं है, ये भी उसने अभी आगम से सीखा है, और शुभ में वो शुद्ध भाव को पाना चाहता है, ये भी उसने आगम से सीखा है, लेकिन अभी पाया नहीं है शुद्ध भाव को। तो शुद्ध भाव को पाने के लिए उसे जो शुभ निमित्त है, सच्चे देव सद्गुरु का उपदेश है, उस उपदेश के सहारे उस लक्ष्य को पाना होगा, और वो लक्ष्य की ओर जो वो बढ़ेगा तो ये शुभ राग भी बाहर का छूटे बिना नहीं रहेगा और सहज ही उसको शुद्धता की प्राप्ति होगी। इसलिए अशुभ में जाना नहीं, अशुभ में जाओगे तो आचरण बिगड़ जाएगा, तो फिर तुम्हें आत्म कल्याण का चांस भी नहीं रहेगा, और शुभ में अगर रम जाओगे और अपनी दृष्टि को शुद्धोपयोग में नहीं लगाओगे तो तुम लक्ष्य भ्रष्ट हो जाओगे, और लक्ष्य भ्रष्ट हो जाओगे तो संसार परिभ्रमण को दूर नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा अशुभ में जाना नहीं, शुभ में रमना नहीं, और शुद्ध को कभी भूलना नहीं, शुद्ध को निरंतर दृष्टि का विषय बनाना और उस दृष्टि का जोर बढ़ाना, जोर बढ़ाओ तो शुभ भी छूट जाता है और शुद्धोपयोग में जीव स्थिर हो जाता है। विधि यही है, इसी विधि से जीव उसमें आता है, और जब तक कमजोरी चलती है तब तक वो दृष्टि के विषय को तो दृष्टि में रखता है, और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए निरंतर उद्यम वो दृष्टि की निर्मलता के बल पे करता है, और उसमें कभी ना कभी उसमें सिद्धि होती है, तो उसका आत्मबल बढ़ता है, वो शुद्धोपयोग में आता है और अनुभव करके शुभ को भी छोड़ करके और सिद्ध दशा को प्राप्त करता है।
थैंक यू।
है बानुबेन, टाइम हो तो एक प्रश्न छे। हाँ तो ये है प्रश्न कि आपने बिगिनिंग में बताया कि अज्ञानी के अज्ञान से ये शुभ अशुभ भाव आए, और ज्ञानी को तो ज्ञान है फिर भी शुभ अशुभ भाव आए, तो मेरा समझना ये है कि शुभ अशुभ भाव तो चरित्र गुण की पर्याय है, और वो अज्ञानी को भी आ सकती है और ज्ञानी को आ सकती है, लेकिन ज्ञानी को तो पता है कि उसका आश्रय नहीं लेना, तो ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानी और अज्ञानी का आपने समझाया, लेकिन जरा उसको गहराई से समझना है कि अज्ञानी का तो अज्ञान है लेकिन ज्ञानी के ज्ञान में क्यों आता है शुभ अशुभ भाव।
देखो ऐसा जिनागम का सिद्धांत कहा है, 128 नंबर की गाथा है, उसमें ये कहा है ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान रूप हैं और अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान रूप हैं। क्यों है? क्योंकि ज्ञानी सब भावों को अपनी निर्मल ज्ञान की दृष्टि से देखता है और अज्ञानी सब भावों को मिथ्या दृष्टि पने से देखता है, इसलिए उसके राग की सत्ता होने पर भी, शुभ अशुभ भाव की भी सत्ता होने पर भी, उसकी दृष्टि की निर्मलता के बल से, अरे पाप भाव में भी प्रवर्तन कर रहा हो ज्ञानी तो भी वह ज्ञानी का प्रवर्तन जो है सम्यक ज्ञानी रूप है, यानी सम्यक क्षात्र कहलाता है। आगे निर्जरा अधिकार में तो इतना लिखा है कि ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, मिथ्यात्वी को वही बंद फल देते हैं, यह अचरज की बात समझ नहीं आ वही, पूछे कोई शिष्य गुरु समझा वही। यानी अज्ञानी के जो धर्म की क्रिया है वो भी बंद का कारण है, और ज्ञानी के भोग हैं वे निर्जरा के कारण है, ऐसा लिखा। ये एक उपचार कथन है यद्यपि, लेकिन
हाँ,
यह उपचार कथन इसलिए
तो कारण जो चार चीजें हैं ना कि हेतु कारण, तो हमने कहा कि कारण अज्ञान है तो वो अज्ञान कारण नहीं हो सकता है, वैसे जो शुभ भाव की जाति अज्ञान की है क्योंकि वो खुद को नहीं जानते, लेकिन उसका
देखो उनमें अज्ञान का अर्थ ऐसे घटा ना कि अज्ञान किसको कहते हैं, जिस जो स्वपर को नहीं जानता वो अज्ञान भाव है, तो रागादि भाव न स्व को जानता न पर को जानता, पाप भाव भी न स्व को जानता न पर को जानता, चाहे वो ज्ञानी का हो चाहे वो अज्ञानी का हो, वो उसमें जानन स्वभाव का अभाव है, इसलिए वो अज्ञानी भाव कहलाएगा। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान नहीं होता, इसलिए ज्ञानी का सर्व आचरण ज्ञानमय होता है, अज्ञानमय नहीं होता है।
बराबर, बहुत सुंदर।
हाँ ऐसा है, ठीक है।
हाँ, एक 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 क्वेश्चन अगर किसी को है तो ले सकते हैं। हाँ, लगता है पंडित, लगता है पंडित जी किसी को क्वेश्चन अभी नहीं है।
अच्छी बात है, सब तो, समाधान हुआ है, अच्छी बात है।
रंजना बेन, समय जी, ओके,
जय जिनेंद्र,
जय जिनेंद्र, जय
जिनेंद्र, वाणी मस्तक नमो सदा दे। बोलो बोलो दिन वाणी माते
जय हो, जय हो।
એટલે મસાલા પાસે કે આવે એટલે પૂછી લેજો,
જય જિનેન્દ્ર,
જય જિનેન્દ્ર, યુ સ્ટ્રીમ પર કે આવે છે એમ કીધું, યસ।